रमण गिरिधारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी ओ गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारी पुकारो ओ गिरिधारी श्याम बनवारी ओ गिरिधारी श्याम बनवारी नंद नंदन मुकुंद मुरारी नंद नंदन मुकुंद मुरारी मेरे मन मंदिर में एक बार तू आ जाओ गिरिधारी मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी जब जब ठीक से पुकारेंगे तो आएंगे मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी गिरिधारी बनवारी गिरिधारी बनवारी करो नंद नंदन मुकुंद मुरारी नंद नंदन मुकुंद मुरारी मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी गिरिधारी बनवारी गिरिधारी ओ बनवारी नंद नंदन मुकुंद मुरारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hey Gopal, Hey Gopal. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hey Gopal, Hey Gopal. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mere man mandir mein ek bar to aa jao giridhari. आ जाओ गिरधारी ओ आ जाओ गिरधारी. आ जाओ गिरधारी. दिल से पुकारो, दिल से आ जाओ गिरिधारी. जो दिल से पुकारेगा क्यों नहीं आएंगे. तू सिमरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे. क्या बोला? तू सिमरन कर, सिमरन कर, तू सिमरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे. तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे. राधा के पीछे कृष्ण स्वयं, राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार पे लौड़े आएंगे. तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे. तू सिमरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे.
ये केवल एक हिंदी गीत नहीं है, इसका एक श्लोक है शास्त्र में कि जो राजा रानी का नाम पुकारता है, रा पुकारते ही उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। ये एक्चुअली संस्कृत श्लोक है, मुझे वो बाय हार्ट नहीं है, रा उच्चारेण ऐसा कुछ श्लोक है। और धा उच्चारेण क्या होता है, धावत धावत यैव स संभ्रमहा, भाग के कृष्ण आते हैं। कैसे आते हैं, संभ्रम में पढ़कर आते हैं, स संभ्रमहा, भ्रमित होकर भाग के आते, कौन मेरे राधा रानी को पुकार रहे हैं। और एक उसका अर्थ है कि रा पुकारते ही गर्भवास नष्ट हो जाता है, यानी माता के गर्भ में दोबारा जाना जो है बंद हो जाता है। और धा जो है पुकारते ही कृष्ण हमारे हो जाते हैं। और ये सब सत्य है, कोई कविता नहीं है, जो हृदय से पुकारना जानता है उसके लिए सत्य है। तो मैकेनिकली पुकारता है उसके लिए ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अनुभूति जिसको चाहिए जो हृदय से पुकारता है। इसलिए जो भक्तों का मिला मिलन यहाँ पर जो है ना, जो भक्तों का मिलन यहाँ पर हो रहा है वो कोई साधारण वस्तु नहीं है। उसको साप्ताहिक सत्संग का नाम दिया है, उसको पानी आटी उत्सव का नाम दिया है, जन्माष्टमी का नाम दिया है, बहुत सारे नाम देते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी महती कृपा है ये, वो भक्तों का संग है। तो जरूरी नहीं कि सब लोग संत होंगे, संत होंगे तो अच्छा है, लेकिन संत नहीं भी होंगे, भगवान नाम तो हमारे बीच में है ना, सर्वतोपरि, सर्वतोपरि जो शक्ति है भगवान नाम की वो तो हमारे बीच में है ही, जिसको हम पुकार रहे हैं। और भगवान को सच्चा हृदय चाहिए, प्रामाणिक हृदय, आर्त हृदय, जो भावना उत्कट होकर भक्त उनको पुकारता है वही चाहिए। कोई संत की पदवी होने की आवश्यकता नहीं, बस हृदय से पुकारने वाला भाव होना चाहिए। फिर ठाकुर जी कहीं दूर नहीं है, इधर ही है वो। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ पर मेरे भक्त आकर मुझे प्रेम से पुकारते हैं, चाहे गटर का किनारा हो, दलदल का किनारा हो, गंगा किनारा हो, चाहे कोई शहर हो, चाहे कोई दुकान हो, चाहे कोई मार्केट हो, हमारे महाप्रभु चैतन्य ने कहाँ कीर्तन नहीं किया बताओ, सब जगह कीर्तन किया, शहर में किया, गांव में किया, नदी किनारे किया, पवित्र स्थान पे किया, मलेच्छों के बीच में किया, सब जगह किया, और सब जगह भगवान प्रकट हुए, स्वयं तो थे ही प्रकट, कृष्ण को ही प्रकट करते थे। तो हमें ये देखना यह है कि जो हम कर रहे हैं सत्संग, ये दुर्लभ मानव जन्म में अति दुर्लभ वस्तु है। सत्य के विषय में प्राप्त होने वाला जो संग है उसको सत्संग कहते हैं। नहीं तो भक्त लोग तिलक लगाकर एकत्र आकर पिक्चर भी देख सकते हैं, है ना, शॉपिंग भी कर सकते हैं, उसको सत्संग नहीं कहते हैं। जो संग सत्य के विषय में होता है उसको सत्संग कहते हैं। उसके परे की और एक व्याख्या है कि जो संग करने पर अहंकार और वासना कम हो जाती है, नष्ट होने का तो आगे का लक्ष्य है हमारा, लेकिन वो संग में आने के बाद में हमारी इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं हैं वो कम हो जाती है और भगवान के प्रति प्रीति थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसको सत्संग कहते हैं। हमें वो संग करना चाहिए जो बहुत दुर्लभ होता है। वैसे व्यावसायिक संग जो है बहुत सारे होते हैं, प्रोफेशनल कमर्शियल, बहुत सारी योजनाएँ होती है, भव्य और आँखें चौंधिया जा सकती है उसमें, लेकिन हमारे हृदय में कितनी दुनिया को भोगने की वासना कम हुई और हमारे हृदय में कितनी भगवत भगवान के प्रति प्रीति बढ़ी, वो उस सत्संग का दर्जा तय करता है। हमें सदैव वही संग करना चाहिए। और ऐसे संग में एक एक कंडीशन है, जितने सहभागी इस सत्संग में हैं उन सबको अपना हृदय इसमें अर्पण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो आगे बैठे हैं वो ध्यान से सुन रहे हैं, पीछे बैठे सोच रहे हैं कब समाप्त होगा, कब प्रसाद शुरू होगा, हो सकता है, और बीच वाले लोगों को नींद आ सकती है, वो इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन जितने सत्संग में आने वाले लोग एकाग्र होकर अपना हृदय सत्संग में अर्पण करते हैं, इस यज्ञ में अर्पण करते हैं, उन्हीं को इस सत्संग का लाभ होता है। जब वर्षा होती है ना, सब जगह होती है ना वर्षा, सब जगह वर्षा होती है, कीचड़ में भी होती है, नदी में भी होती है, बिल्डिंग में भी होती है, अगर आप छतरी लेके चलेंगे तो वर्षा आप पर नहीं होगी, या बिल्डिंग के नीचे चले जाएंगे तो वर्षा आप पर नहीं होगी। लेकिन वर्षा कभी किसी पर भेदभाव नहीं करती है, वो सब जगह बरसती है, हर व्यक्ति उसमें भीग सकता है। उसी प्रकार सत्संग सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन कितने लोगों को उसमें रुचि है ये हमारे आत्मा की जो आगे की गति है वो तय करता है। इसलिए चाहे भव्य मंदिर न हो, चाहे भव्य मूर्ति न हो, चाहे भव्य डेकोरेशन न हो, लेकिन जहाँ भक्त एकत्र होकर आकर मुझे पुकारते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, वहीं पर मैं उपस्थित रहता हूँ। वही मेरा उपस्थिति है, वही रहता हूँ मैं। ना हम तिष्ठति वैकुंठे, मैं वैकुंठ में रहता नहीं हूँ। नच योगी नाम हृदयम, तो भक्तों योगियों के हृदय में भी रहता नहीं हूँ मैं। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं। कितनी सिंपल कंडीशन है, कोई कंडीशन है क्या कि महल होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, भव्य करोड़ों का मंदिर होना चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी जगह होनी चाहिए बस, और भक्तों के एकत्र होना चाहिए और भगवान के नाम में अपने आप को स्थित करना चाहिए। इसलिए मैं बड़ा बार बार बताता हूँ कि जैसे ज़्यादा महत्व हो रहा है तो कुछ लोग बाहर कुछ काम करते रहते हैं, फ़ोन कॉल अटेंड करते रहते हैं, अभी तक कथा शुरू नहीं हो रही है। लेकिन ठाकुर भक्ति विनोद ने ये जो भजन लिखा है ना, राधा माधव, ये साक्षात गौलोक वृंदावन का दर्शन है आपके लिए, साक्षात प्रत्यक्ष। हृदय से आप एक एक नाम पर चिंतन करेंगे वो गाते समय, तो आपको आपके हृदय में वृंदावन प्रकट हो जाएगा, इतनी शक्ति है उसके अंदर। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ कि गंगा किनारे में आप सब लोग रहते हो, पावन भूमि में गंगा जी को ऐसा वरदान दिया है कि जहाँ जहाँ बहेगी वो पुण्य तीर्थ बनेगा, और जो जो निवास करेंगे वो वैकुंठ के मालिक बनेंगे, यानी निवासी बनेंगे। गंगा जी को ऐसा वरदान आने के पहले दे दिया था कि जहाँ जहाँ मैं वो बहेगी, आप बहेंगी, वो सब तीर्थ के रूप में प्रकट हो जाएगा, तीर्थ का दर्जा प्राप्त होगा, और जो जो निवास करेंगे वो सब वैकुंठ के अधिकारी होंगे। लेकिन जो गंगा किनारे रहकर भी गंगा के बारे में कोई सोचते नहीं है, और केवल इंद्रिय भोग और व्यवसाय के बारे में सोचते हैं, क्या कर सकते हैं? लाभ तो होगा गंगा जी किनारे रहने में, उसकी हवा ग्रहण करने में, लेकिन गंगा जी जो लाभ आपको दे सकती है वो नहीं मिलेगा। लेने वाला भी चाहिए ना, अरे बहुत बढ़िया खीर बट रही है और आप भी गुजर रहे हैं साइड में से, तो आप जाते नहीं लेने के लिए, आपका पात्र भी नहीं है तो कैसे लेंगे? खीर तो बढ़ रही है सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं है, काला गोरा बच्चा आदमी औरत का भेदभाव नहीं है। इच्छा होनी चाहिए और पात्र भी होना चाहिए तो मिलेगी आपको। उसी प्रकार से भगवान की गंगा जी की कृपाएँ। एनीवेज, तो अभी आज स्नान यात्रा है भगवान की, जगन्नाथ की, तो एक आध घंटे में सब कुछ बताना मुश्किल है, कई घंटों की कथा है वो। जब ब्रह्मा जी के आयु के 50 साल पूरे हुए, उसको कहते हैं परार्ध, प्रथम परार्ध, तो द्वितीय परार्ध आरंभ होने वाला था। तो प्रथम परार्ध में नील माधव के रूप में भगवान इस ब्रह्मांड में विराजमान थे, नील माधव के रूप में लक्ष्मी और नील माधव जी विराजमान थे, जहाँ पर पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी है। जगन्नाथपुरी नाम तो जगन्नाथ आने के बाद में पड़ा, उसके पहले वो पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध था। तो 50 वर्ष जैसे ब्रह्मा जी के पूर्ण हो जाते हैं तो नील माधव जी अंतर्धान हो जाते हैं, और नील माधव जी की ख्याति सुनकर राजा इंद्रदुम्न बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं। कोई ब्राह्मण आता है उनकी सभा में, और ब्राह्मण के आते ही ऐसे सुगंध फैल जाता है सब जगह पर, तो ब्राह्मण सबको पता चल रहा है कि ब्राह्मण के ही शरीर से वो सुगंध आ रही है। तो ब्राह्मण को राजा पूछते हैं कि ये क्या रहस्य है, कहाँ से सुगंध आ रही है? तो मैं नील माधव के दर्शन करके आ रहा हूँ, और नील माधव की जो माला है वो मैं महाप्रसादी माला पहन कर आया हूँ, उसका सुगंध यहाँ सब जगह फैल रहा है, और यही सुगंध वहाँ पर सारे भूमि पर फैला हुआ था। तो फिर राजा कहते हैं मुझे अब भी जाना है वहाँ पर, तो अपने किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, जाओ वो जगह को ढूंढ के आओ, ये ब्राह्मण जो पता दे रहा है वो पता दे के आप जाओ और उनको, फिर मैं वहाँ पर आऊँगा। तो विश्ववासु ब्राह्मण जो है वो जाता है, और फिर वो लंबी कहानी है, वो ढूंढ के निकालता है, भगवान का दर्शन करता है, और फिर वही माला सुगंध लेके लौटता है, राजा को कहता है कि मुझे पता है अभी आप चलो। तो राजा जो है ना वो अपना पूरा साम्राज्य, किंगडम, राज्य वो सब सब लोग अपना सामान वामान लेके सब शिफ्ट हो जाते हैं राजा के पीछे पीछे। राजा भी सब अपने गोधन अश्वधन जो भी उनका धन ब्राह्मणों को बूढ़ों को बच्चों को औरतों को लेके सारा राज्य प्रजा जो है उनके साथ में चल पड़ती है। और चलते 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 वो आज का जगन्नाथपुरी क्षेत्र वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो बीच में उनको नारद मुनि का दर्शन होता है, नारद मुनि मिलने आते हैं ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार, उनको गाइड करते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और फिर उनको नरसिंह भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं मुझे यहाँ स्थापन करो। बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ होता है उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, तो आज भी वहाँ पर विराजमान हैं। और फिर जैसे ही अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने का समय आता है तो वही खुशबू जो है ना वो पूरे यज्ञशाला में बहने लगती है, समुद्र किनारे से ऐसे वो हवा आती है। बीच में भी और एक घटना होती है कि पता चलता है कि नील माधव गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए, तो राजा बहुत दुखी होता है। तब नारद मुनि उसको हौसला देते हैं, आप चिंता मत करो अद्भुत रूप में आने वाले हैं वो, ये उनकी लीला है। और फिर यज्ञ समाप्त होता है तो फिर समुद्र से खुशबू आती है और ये सब रथ लेके भागते हैं तो देखते हैं कि एक दिव्य दारू यानी लकड़ी, दारू यानी संस्कृत शब्द है, लकड़ी को दारू कहते हैं, वो दारू ब्रह्म जो है वो समुद्र के बीच में प्रकट होता है, भव्य दिव्य प्रकाश के साथ सुगंध के साथ प्रकट होता है। तो हाथी और घोड़ों का रथ लेकर वो समुद्र में जाकर उसको निकाल के लाते हैं, इतना सुंदर प्रकाशवान दारू। तो उस समय विश्वकर्मा जी वहाँ पर एक बूढ़े यू नो मूर्तिकार के रूप में आते हैं और कहते हैं कि मैं इसको बनाऊंगा। तो राजा विचार करते थे इसकी मूर्ति कौन बनाएगा, तो अपने आप प्रकट हो जाते हैं और कहते मैं बनाऊंगा, मेरी एक शर्त है, मैं अकेले बनाऊंगा प्रयोगशाला में, सारे दरवाजे बंद रहेंगे, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जब तक मैं बनाऊंगा तब तक बनाते रहूंगा, बनाकर आऊंगा बाहर, तब तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रयोगशाला बन जाती है, वो जो वेदी है ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, दारू ब्रह्म जो है वो वेदी पर रखा जाता है। आज वो स्थान जो है गुंडीचा मंदिर है, जहाँ गुंडीचा मंदिर है यहाँ पर गुप्त वृंदावन है, वहाँ पर वो वेदी पर वो लकड़ी रखी गई थी और वहाँ पर वो प्रयोगशाला बनाई गई और सब जगह पर कीर्तन चालू किया गया ताकि अंदर की आवाज़ बाहर न जाए, बाहर की अंदर कोई प्रवेश न कर सके, और अंदर की आवाज़ जो है वो काट रहा है या चीजन कर रहा है कुछ कर रहा है उसकी आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। तो एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन की थाली वहाँ पर रखी है प्रसाद की, वैसे के वैसी है, वो खा भी नहीं रहे हैं, वृद्ध है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो कुछ दिन के बाद उनको शंका आई मन में कि जो वृद्ध जो है तो गुजर तो नहीं गया, खाता पीता भी नहीं है, कुछ नहीं करता है और आवाज़ भी नहीं है, कुछ हो रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है, जीवन को कोई चिन्ह समझ में नहीं आ रहा है। तो 15 दिन के बाद रानी को रहा नहीं गया, रानी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारे लिए वो आए हैं मूर्तिकार, दिव्य मूर्तिकार, और वो गुजर गए तो हम जिम्मेदार होंगे। तो उनका धैर्य टूट गया, उनके दरवाजे तोड़ के अंदर गए तो उन्होंने कहा था कि मैं गायब रहूँगा अगर आप ऐसा करोगे तो अंतर ध्यान हो गए और मूर्ति ऐसे खड़ी, दोनों हाथ सामने पैर नहीं बने ऐसे खड़े हैं। तो राजा फिर बेहोश हो गया, उन्होंने कहा भगवान मुझे दर्शन देने वाले थे, मेरे असंयम के वजह से वो भी नहीं हुआ, मूर्तियाँ भी आधी रह गई। तो फिर नारद मुनि प्रकट हो गए, उन्होंने बताया कि ये मूर्ति आधी नहीं है, ये पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि इसी रूप का दर्शन मैंने द्वारका में किया था जब भगवान की ब्रज की लीलाओं का वर्णन बंद कमरे में रानियों के साथ में रोहिणी माता कर रही थी, तब आप बाहर सुनने के लिए आए थे, तो यानी भगवान, तो उनकी क्या शरीर की अवस्था हुई थी भाव में, वो दर्शन मैंने किया था और मैंने वरदान मांगा था कि भगवान ये आपका रूप जो है इसको देखकर मेरे मन में अद्भुत प्रेम की निर्मिति हो रही है, मैं आप पर प्रेम करता हूँ, अनंत प्रेम करता हूँ, मुझे उस प्रेम का अनुभव भी है जो मैं आप पर करता हूँ, लेकिन आपके इस दिव्य रूप को देखकर जो मेरे मन में प्रेम की अनुभूति हो रही है वो अलौकिक है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, मैं तुलना नहीं कर सकता उसकी, मेरे पहले वाले प्रेम से भी नहीं कर सकता। तो मैं आपसे वरदान चाहता हूँ कि इसी रूप में आप भौतिक जगत में अवतार ले लो, ताकि आपको देख के ही जैसे मेरे मन में अद्भुत प्रेम उमड़ रहा है वैसे लोगों के मन में भी अद्भुत प्रेम उमड़ेगा दर्शन मात्र। भगवान ने कहा तथास्तु, तो यही वो रूप है जो आप अभी देख रहे हो, उसको आपको आधा लग रहा है लेकिन आधा नहीं है, वो पूरा रूप है। तो जिस दिन वो दरवाजा तोड़ के अंदर गए ना, वो आज का दिन है, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन। इसके 15 दिन पहले वो मूर्ति बनाने का आरंभ किया था उसने। नाम बताया मैंने, विश्वकर्मा, जो वृद्ध बनकर मूर्तिकार बनकर आए थे। तो आप पीछे जाकर गिन सकते हैं तिथि कौन सी थी। आज पूर्णिमा अगर है तो अमावस्या है। ऐसा दिव्य रूप से भगवान प्रकट हुए, और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने राजा इंद्रदुम्न के कान में कहा कि मेरा जन सामान्य के बीच में अभिषेक करो। तो आज ही के दिन ये अभिषेक हुआ, इसको हम स्नान यात्रा कहते हैं। और ये ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्थान जो है भगवान का, इतना मशहूर है कि सारे ब्रज में आप ज्येष्ठ स्नान हो रहा है आज। सारे ठाकुरों को आज स्नान किया जा रहा है। ब्रज के हर ठाकुरों का आज स्नान किया जा रहा है। राधा रमन जी को, राधा वल्लभ जी को, जितने भी ठाकुर ब्रज में है सबका स्नान हो रहा है, केवल जगन्नाथ जी का नहीं हो रहा है, क्योंकि जगन्नाथ जी का विशेष महत्व है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये स्नान किया गया, ऐसा है। उस उपलक्ष्य में ये स्नान यात्रा आज भी जगन्नाथपुरी में मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा मंडप बनता है बहुत ऊंचाई पर, और दिन भर उनको कलश से स्नान कराते हैं। बहुत सुंदर विधि होता है वो, टीवी पर भी लाइव दिखाई पड़ता है। और उसके बाद में भगवान ठंडे पानी से दिन भर स्नान करने से बीमार पड़ जाते हैं, उसको कहते हैं अनवसर। अनवसर कालावधि जो है वो 15 दिन का होता है, इसमें भगवान दर्शन नहीं देते हैं, रपट बंद रहते हैं। उसके कई सारे कारण हैं। एक कारण तो ये है कि वो लक्ष्मी देवी के साथ में साल भर तो बैठते नहीं हैं, भाई और बहन के साथ बैठते हैं, तो बीमारी का बहाना करके लक्ष्मी देवी से एकांत संग करते हैं। बीमार भी पड़ते हैं लेकिन लक्ष्मी देवी के संग करने का भी वो बहाना है। और एक भक्त थे माधव दास, बड़े प्रसिद्ध संत हैं वो, जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। उनकी बड़ी लंबी लंबी कहानी है, एंड में वो जगन्नाथपुरी गए थे। उनको संग्रहणी हुआ था, संग्रहणी की लूज मोशंस का बीमारी हुआ था, इतना उनको दस्त लग रहे थे कि वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो जिस जगह पर दस्त कर रहे थे वहाँ से उठ ही नहीं पा रहे थे। उसी जगह पड़े पड़े दस्त कंटिन्यूस उनको हो रहे थे, इतना कष्ट। तो बीच रात में भी जगन्नाथपुरी के समुद्र किनारे पे अंधेरा, घनघोर अंधेरा, कोई वहाँ हिम्मत नहीं कर सकता जाने की, इस जगह पर वो पड़े हुए हैं, वो दस्त करते जा रहे हैं। हमारे मेडिकल भाषा में कहेंगे तो डिहाइड्रेशन होके वो आदमी मर सकता है, हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन, शरीर का जल नष्ट होना, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना, बेहोश होकर वो मर सकता है। हम लोग क्या कहते हैं दस्त होने के, आप क्या कहते हैं, पानी पीते रहो, कुछ भी हो पानी पीते रहो, उल्टी हो कुछ चलेगा, पानी पीते रहो, कुछ तो अवन बचेगा अंदर। तो वैसे ही उठने के लिए है कौन वहाँ पर। तो बीच रात में एक लड़का आया वहाँ पर, और उस लड़के ने इनकी टट्टी साफ किया, उनको भी साफ किया। तो इनको बहुत संकोच हुआ, अरे मेरे गंदगी को क्यों साफ कर रहे। लेकिन भक्त तो भक्ति होता है ना, एक भक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान को पहचान सकता है। बाकी सबके हमारे बीच में भगवान कितने बार गुजर गए होंगे, हमने कभी पहचाना नहीं होगा उनको, लेकिन भक्त के नज़रों से भगवान कभी छूटते नहीं हैं। तो कहते बताओ तुम कौन हो। बोले नहीं मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपकी अच्छी सुनी तो इसलिए मैं आया। अरे इस बीच रात में घनघोर अंधेरे में यहाँ पर कौन आ सकता है, इसकी आने की हिम्मत हो सकती है। क्योंकि उस समय जगन्नाथपुरी का जो किनारा था ना वो जंगल के रूप में था, वहाँ पर शेर हाथी आया करते थे खूंखार, रात के समय पर किसकी हिम्मत नहीं थी वहाँ पर जाने की। तो वो कह रहे हैं इतनी रात गए यहाँ पर जगन्नाथपुरी के, आप जगन्नाथपुरी यानी आपके किनारे पर यहाँ पर उड़ीसा के, कौन हिम्मत कर सकता है, बताओ अपना रूप दिखा दो, मत छुपाओ। फिर भी नहीं करते भगवान, दूसरे दिन भी आए, तीसरे दिन भी आए, चौथे दिन भी आए, और रोज लट्टी साफ की आपने माधव दास जी का। 15 दिन हुए तो वो बहुत चिढ़ गए, बोले अभी आप मुझे हाथ मत लगा, आपका रूप प्रकट करो। तो फिर मजबूर होकर भगवान ने अपना रूप दिखाया जगन्नाथ जी का, भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। उसको तो संदेह था ही मन में ऐसा, उसको छुपे नहीं थे भगवान, लेकिन भगवान भी बहुत चालाक है, उनको अपने भक्त की सेवा करनी थी, इसलिए वो करते रहे और 15 दिन के बाद में फिर प्रकट हुए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना गंदा काम मेरे लिए क्यों कर रहे हो। वो कहते हैं कि आपका 30 दिन का कर्म बाकी है, उसको मैं भी नहीं काट सकता। आपको प्रश्न होगा ना, अगर भगवान का इतना प्रेमी भक्त है, भगवान टट्टी भी साफ करने को तैयार है, तो उसका रोग क्यों नष्ट कर सकते। हमारे कर्मों के बीच भगवान भी दखल लेते नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो 15 दिन बाकी है, तो कहते हैं कि फिर आप भगवान हो तो टाल दो मेरे 15 दिन के कर्म और मुक्त कर दो मुझे। तो कहते नहीं, मेरे लिए एक ही बात, मेरे पास एक ही उपाय है, मैं आपके ये कर्म 15 दिन के मुझ पर ले सकता हूँ और आपको मुक्त कर सकता हूँ। तो भगवान ने 15 दिन के बचे हुए कर्म जो है माधवदास के अपने पर लिए और माधवदास को मुक्त कर दिया। और वो 15 दिन भगवान बीमार पड़ते हर साल उसके उपलक्ष्य में। भगवान अपने भक्त के वो ऐसे कर्म भी लेने को तैयार हैं, इतने भगवान हमारे प्रेमी। तो अनवसर काल का वो भी एक अर्थ है। और लोग समझते क्या बकवास बातें हैं, भगवान को उकार आता है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। लेकिन हमारे ना वो डॉक्टर अलवा, पता है ना आपको, डॉक्टर अलवा अनवसर काल में एक बार जगन्नाथपुरी गए थे। तो उनके वो जैसे उनके अंदर एक कला है, वो ऐसे किसी भी जगह जाएंगे ना तो वहाँ के मेन पंडा के साथ बहुत दोस्ती कर लेते हैं तुरंत, लोग भी उनको बहुत पसंद करते हैं। पंडरपुर में जाओ, बद्रीनाथ जाओ, कहीं भी जाओ, सारे पंडा लोग उनके एकदम ऐसे खास हैं। जहाँ पर लोगों को एक सेकंड का दर्शन होता है वहाँ पर दो दो घंटे खड़े रहते हुए प्राइवेट जगह पर। पंडरपुर पता है आपको कैसा है, एक सेकंड का मत्था टेक होता है उधर, जो भी पुकारना है पुकार लो एक सेकंड में धक्का मार के निकाल देते। वैसी जगह पर वो दो दो तीन तीन घंटा खड़े रहते, एक साइड में खड़ा करते उनको, देखो भगवान को। तो वो गए, उधर भी मैत्री कर ली। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आ जाओ, हमारे जगन्नाथ जी बीमार है, ज़रा देख लो, एग्जामिन कर लो उनको, तपास लो। तो इनको लगा करे पुजारी बुला रहे भगवान, ऐसे ही क्या मालूम। हाथ लगाया ना भगवान को, इतना जोर से चटका बैठा उनको, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, हाथ लगाया ना तो जलने जैसा हो गया उनका हाथ। उससे भाग से हाथ वहाँ से जो भागे ना, सीधे समुद्र किनारे भागे रात को 1:30 बजे। और हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ महाराज जिस कमरे में थे वहाँ पर देखे, ठाड़ 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 ठाड़, महाराज गेट अप, महाराज उठो, महाराज उठो, महाराज उठे 1:30 बजे। बोले क्या हो गया, बोले जगन्नाथ को हकीकत में बुखार है महाराज, इट इज अ फैक्ट दैट जगन्नाथ हैज फीवर, ये सत्य है कि जगन्नाथ को बुखार है। मेरे हाथ में देखो महाराज, ये हाथ में मेरे हाथ लगा के आया। फिर कुछ दिन के बाद जब 15 दिन समाप्त हो गए तो पंडा ने बोला अभी बुखार नहीं है उनको, अभी आप देखिए देख सकते हैं। दोबारा गए तो अभी कुछ और चमत्कार होगा, देखा तो ठंडे थे, कुछ शांत प्रॉब्लम नहीं। तो जो भक्त को श्रद्धा है उनके लिए सत्य है सब कुछ, जिनको श्रद्धा नहीं है उनके लिए वो लकड़ी है, पत्थर है, मट्टी है, सब कुछ है, प्रतिमा है। लेकिन भक्त लोग क्या कहते हैं, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात प्रजन नंदन। आप प्रतिमा नहीं हो, आप मूर्ति नहीं हो, आप पाषाण नहीं हो, साक्षात हो। जो श्रद्धा रखता है उनके लिए वो बैठे हुए हैं, हर रोज अलग अलग मूड दिखाते हैं, कभी नाराज दिखेंगे, कभी हंसते हुए दिखेंगे, कभी प्रसन्न दिखेंगे, हर दिन नई छटा है उनकी। जगन्नाथ भी कुछ अलग नहीं है, जगन्नाथ भी हर दिन अलग है। तो वो आज भाग्य का दिन है, जगन्नाथपुरी के दिन आज के दिन स्नान यात्रा होती है। ऐसे ही आज के दिन बहुत सालों के बाद एक गणेश भक्त वहाँ पर आया था और उसको बताया गया था कि उसके दिल में तो गणेश जी का भक्ति था ना, वो तो गणेश जी का भक्त था और वो गणेश जी को परब्रह्म परमात्मा मानता था, परमोच्च भगवान मानता था, उसकी श्रद्धा थी। तो किसी ने बताया कि वो भगवान गणेश जी जो है वो जगन्नाथपुरी में भी जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। तो उसको लगा कि देखते जाके क्या सच है क्या सच नहीं है। तो देखा, दर्शन किया आज के दिन स्नान यात्रा के बाद, देखा तो ऐसे हाथ है, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी कान तक पहुंची मुस्कान है, और पैर है ही नहीं है, इतना बड़ा पेट है, और सुभद्रा को तो हाथ भी नहीं है, और भैया को भी वैसी स्थिति है, और वे काले और गोरे हैं, स्वर्ण तो है नहीं इनको। तो जाने लगा कि भाई ये इनको सुंड नहीं है, यानी ये परमात्मा नहीं है, मेरे लिए परमात्मा तो गणेश है। उतने में जगन्नाथ जी और बलदेव के मुख से सुंड निकली और हाथी का चेहरा बना उनका। तो किसी ने कहा अरे जाके देखो गणेश जी प्रकट हो गए, जाओ देखो। तो वापस गया तो देखा तो बलदेव जी भी हाथी बने हुए हैं और जगन्नाथ जी भी हाथी बने हुए हैं। तो आज का वो दिन है, आज के दिन शाम को ठाकुर जी को हाथी वेश धारण करते हैं। लीला है भगवान की। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम्। जैसे आपकी श्रद्धा है वैसा दर्शन होगा। लेकिन वो गणेश जी का देखो, इसे विशेष बात यह है, सभी गणेश जी के भक्तों को दर्शन ऐसा नहीं होगा, ये आपको समझना जरूरी है। वो कैसा है ना कि ये जो गणेश जी है, पार्वती जी है, शंकर जी है, कार्तिकेय जी है, जो भी जितने भी देवता हैं, भगवान खुद कहते हैं स्वयं कि किसी को इन पर श्रद्धा है उनको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि वो श्रद्धा जो है वो मैंने उनको दी है और उसके माध्यम से वो मुझ तक भी पहुँचेंगे। जो भी उनको अर्पण करते हैं वो मेरे तक पहुँचता है, आप चिंता मत करो, डोंट डिस्टर्ब देम। लेकिन इसमें एक रहस्य की बात है, वो ये है कि अगर आप गणेश जी, पार्वती जी या शंकर जी और किसी देवताओं को अगर परम भगवान मानकर उनकी से अनन्य सेवा करते हैं, देखो दो प्रकार की सेवा होती है, एक है सकाम, आप जाके बोल रहे हैं मेरे को एग्ज़ाम में पास करो, मेरी अच्छी लड़की शादी कर दो, मेरे को अच्छा जॉब दे दो, मेरा घर बना दो, लोन पास कर दो, गाड़ी आने दो, ऐसा सकाम यानी काम भावना मन में रखकर कुछ पूछेंगे तो उसको भक्ति नहीं कहते, उसको खाली स्वार्थ कहते हैं, वो खाली बिजनेस है, छः केला दो, आधा नारियल दो और बोलेंगे मुझे बंगला दे दो, यही तो है ना, और क्या है, एक नारियल का आधा नारियल और छः केला, थोड़ा कुमकुम, थोड़ा चावल, थोड़ा हल्दी और दो दो, और बोलते भगवान एक बंगला दे दो, 1 करोड़ का 2 बेडरूम किचन दे दो। तो इससे भगवान नहीं रिझते हैं, वो तो व्यवहार है ना, वो स्वार्थी आदमी है। अगर उन्होंने दिया तो वो शंकर जी के पास जाएगा, वहाँ पर अपना निवेदन देगा और वहाँ हो जाएगा तो शंकर जी का भक्त बन जाएगा। तो शंकर जी का भक्त नहीं है, वो रुपये का भक्त है वो। लेकिन जो व्यक्ति निरपेक्ष होकर उनसे भी कुछ नहीं मांगता है, उनको ये सारी देवता भगवान की भेंट देते हैं। शास्त्र में कितनी कहानियाँ हैं ऐसी, कितनी कहानियाँ हैं, अभी समय नहीं है मेरे पास। लेकिन जिन्होंने शंकर जी पर अनन्य निरपेक्ष पूजन किया है उनका, उनको शंकर जी ने राधा कृष्ण का भक्ति दिया है। गणेश जी का भी ऐसा ही है, क्योंकि वो हर देवता, खास करके विशेष देवता हैं गणेश, शंकर, पार्वती जैसे, कार्तिकेय जैसे, ये पूरी शक्ति रखते हैं भगवान के इच्छा से कि आपको और हमको कृष्ण भक्ति, परमात्मा की भक्ति, परम भगवान, परम ब्रह्म की भक्ति दे सकते हैं। तो जब वो अपने इष्ट पर पूरी श्रद्धा रख के निरपेक्ष भजन करता है तो उनका जो इष्ट देवता है वो उनको कृष्ण का ही भेंट दे देते हैं। इनको क्यों दर्शन हुआ? क्योंकि उनके लिए गणेश जी परमात्मा भगवान थे, इसलिए भगवान ने उनको गणेश जी का दर्शन दिया। तो हम लोगों को देखना यह है कि हम किसी देवता को खंडन नहीं करते कि अरे देवता के पास क्यों जाते हो आप, वहाँ जाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। सभी उनका आदर करना है, और कोई किसी का दिल अगर उन पर अटका हुआ है तो उनको कहिए कि उनसे कुछ मांगो मत, आप इतना जरूर कह सकते हैं। आप जाते हो क्या कहते हो, कामय सैत्यज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, काम के द्वारा वश होकर हाँ वो देवता के पास जाते हैं काम वासना की पूर्ति करने के लिए, जिसकी बुद्धि हरण हो चुकी है। ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिसकी बुद्धि काम वासना से हरण होती है वो उन काम वासनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं के पास जाता है। देवताओं पर उनका कोई प्रेम नहीं होता है, अपनी वासनाओं पर, इच्छा पूर्ति पर प्रेम होता है। ऐसे भक्त को कोई साक्षात्कार नहीं होता है, और ऐसे भक्त होते ही नहीं है, क्योंकि सब लोग देवताओं के पास कुछ मांगने को जाते हैं। लेकिन जो कोई विरला भक्त होता है कहता है मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो व्यक्ति को वो जरूर कृष्ण देंगे निश्चित रूप से। इसलिए आज के दिन वो भी लीला हुई है, जगन्नाथ जी भगवान ने हाथी वेश का दर्शन दिया है। दूसरी बात है हमारी माताओं के लिए विशेष संक्षेप में बताता हूँ, आज वट सावित्र का व्रत भी है। ऑफकोर्स 9 बजे पूर्णिमा समाप्त हो गई है, कल से चालू हुई थी 11 बजे से, आज 9 बजे तक समाप्त होगी पूर्णिमा। लेकिन जिस दिन सूर्योदय होता है वो हमारे वैष्णव पंचांग में उसी दिन को तिथि मानते हैं, उसी दिन को उत्सव उत्सव मनाते हैं। कुछ लोग जो स्मार्ट ब्राह्मण होते हैं, स्मार्ट तरीके से काल गणना करते हैं, उन्होंने कल भी वट पूर्णिमा मनाई, वो कोई गलत बात नहीं है इसमें। तो वट पूर्णिमा का व्रत क्या है? इस दिन बहुत लंबी कहानी है, वो महाभारत में वन पर्व में 292वें अध्याय में आती है कथा, सती सावित्री की कथा। इनका विवाह सत्यवान से हुआ था, तब नारद मुनि आके बताया था कि इनको केवल एक ही वर्ष की आयु है, और सत्यवान जी बड़े तपस्वी थे, राजा थे फिर भी तपस्वी थे, सब कुछ वलकल पहनकर जंगल में भजन कर रहे थे। तो राजकुमारी सावित्री, वो भी क्या कहते हैं, वलकल यानी पेड़ की खाल, वो सब कुछ त्याग करके पेड़ की खाल पहन के अपने पति के समान होकर उनकी सेवा कर रही थी वो, और दिन भी गिन रही थी। तो केवल उनको ही नारद मुनि ने बताया था, और उन सत्यवान जी को मालूम नहीं था, वो तो तपे में लगे थे, बड़े तपस्वी थे वो, बहुत भयंकर तपस्वी थे। और ये भी अति पतिव्रता, बहुत तीव्र पतिव्रता थी, एक उदाहरण थी पतिव्रत का। तो फिर जैसे ही दिन आया तो 3 दिन बचे, थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ा पति का, उसको पता था, वो गिनती कर रही थी ना, उसको पता था कि 3-4 दिन ही बचे हैं, तो उसने व्रत शुरू कर दिया। देखो, चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी निर्जला उपवास किया। और ये पूर्णिमा का, सॉरी मैं क्या गलत बताया आपको, एक है वट अमावस्या का व्रत और एक है वट पूर्णिमा का व्रत, दोनों व्रत पावरफुल है। तो 3 दिन व्रत किया, और 4th दिन सत्यवान जी बोले कि मैं जंगल में जा रहा हूँ लकड़ी तोड़ने के लिए, तो वो कहते हैं कि मैं आज आपके साथ आऊँगी, उनको पता था कि आज लास्ट दिन है। तो लकड़ी तोड़ते तोड़ते उनको सर दर्द हुआ, चक्कर आया, दिल में दर्द हुआ, और वो गिर गए, इनकी गोद में गिर गए। तो वहाँ पर लेके बैठी और वो भगवान नाम का उच्चारण करने लगी, और उतने में यमराज आ गए, उसको पता था। तो यमराज ने अपने यम पास से उसकी आत्मा को ले लिया, शरीर वहीं पर गिर गया। सावित्री जी अपने पातिव्रत्य बल से सदैव यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज बोल रहे, आप कैसे आ रहे हो? क्योंकि यमराज को पता था कि ये बहुत महान पतिव्रता है। तो वो कहते हैं कि सदैव तो यमदूत आते हैं जीव को लेने के लिए, आप स्वयं कैसे आ गए? वो कहते हैं आपके पति जो है सत्यवान जी, वो इतने बड़े तपस्वी है कि यमदूतों की हिम्मत नहीं है उनको उठाने की। और दूसरी बात, आप इतनी बड़ी पतिव्रता नारी है, आपके पति को छीनने की वो यमदूतों में कोई हिम्मत नहीं है, इसलिए मुझे आना पड़ा, और मैं आपके पातिव्रत का आदर करता हूँ। और पातिव्रत के बल से ही वो सदैव यमराज के पीछे पीछे जा रही थी। यमराज कह रहे हैं, आप सीमा समाप्त हो गया है, आप जाओ। तो कहते हैं, मेरा धर्म मुझे बताता है कि जहाँ मेरे पति रहेंगे, भले वो आत्मरूप शरीर वहाँ पड़ा हुआ है, आत्मरूप से जा रहे हैं, तो मैं वहीं जाऊँगी। तो पीछे पीछे जाती रही, यमराज रोक नहीं पाया उसको, उसकी सीमा भी पार कर दिया उसने, जहाँ पर मनुष्य जो जा सकते हैं तपोबल से, वो भी पार कर दिया। फिर सावित्री का और यमराज का संवाद हुआ, बहुत सुंदर संवाद है। कहते हैं वो संवाद जो पड़ेगा वो दुनिया के हर कष्ट से मुक्त हो जाएगा। सावित्री यमराज संवाद महाभारत में लिया। तो फिर वो चर्चा करने लगे शास्त्र पर, यमराज पूछ रहे हैं कुछ, सावित्री बोल रहे, सावित्री को पूछ रहे, यमराज बता रहे। यमराज इतने प्रसन्न हो गए ना, यमराज ने उनको 5 वर दे दिए, बोले देवी मांगो, आप वर मांगो, आपके पातिव्रत्य और आपके धर्म के पालन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो ससुर जी हैं वो अंधे हो गए, उनको दृष्टि दिला दो। मेरे ससुर जो है वो राज्य खो बैठे हैं, शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया है, वो उनको वापस दे दो। और तथास्तु। और कहते मेरे पिताजी जो है उनको मैं अकेली हूँ, मुझे 100 भाई दो, यानी मेरे पिता माता को 100 पुत्र होने चाहिए। और कहते मुझे भी 100 पुत्र दो। तो इतने प्रसन्न हुए थे वो, इतने प्रसन्न हैं, सब तथास्तु 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 बोलते गए, और फिर इनको ले जा रहे। तो कह रहे यमराज जी, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया है, और 100 पुत्र किससे होंगे? पतिव्रता नारी को, पति से ही होंगे ना, और पति को आप ले जाएंगे तो आपका वरदान कैसे पूर्ण होगा? तो उन्होंने कहा कि आपने 3 दिन निर्जला व्रत किया है और 4th दिन वट सावित्री का व्रत किया, वही दो मुझे पता है अमावस्या या पूर्णिमा, दोनों में से एक, 4 दिन का आपने व्रत किया है, 1 दिन के लिए 100 साल, ऐसे आपके पति को 400 साल में देता हूँ, और आप सौ पुत्रों की माता बनना। और यमराज को लगा कह रहे मैं तो पतिव्रता नारी के शब्दों में भ्रमित हो गया, तो समझ गए पतिव्रत नारी का बल है, ये शक्ति है। तो यमराज को भी भ्रमित कर दिया और यमराज के मुख से वरदान भी दिला दिया, सत्य तो होना ही है। तो पति को वापस दे दिया और पति आकर वापस शरीर में प्रवेश किए और उनसे सौ पुत्रों की प्राप्ति हुई। और 400 साल के बाद में फिर उनका देहांत हो गया। तो आज के दिन यानी वट पूर्णिमा या वट अमावस्या, जो उसके पहले आए थे ना ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ नहीं ये ज्येष्ठ पूर्णिमा है, तो वैशाख अमावस्या को वट अमावस्या कहते हैं। उस दिन भी ये 3 दिन का व्रत होता है और पूर्णिमा के दिन भी होता है। और जो स्त्री इस दिन वट पक्ष को पूजती है उसको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति इस दिन वट वृक्ष को स्पर्श करता है उसके जीवन के दुख नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसी आदत है कि वो क्या करते हैं, वट वृक्ष की एक टहनी तोड़ लेते हैं और घर पे जाके उसकी पूजा करते हैं। तो कितनी टहनी तोड़ते हैं कितनी स्त्रियाएँ। वट पूर्णिमा का वट वृक्ष का आशीर्वाद देने के बदले में वट अपराध हो जाता है। तो संत लोग आदेश करते हैं कि आप वट के पास जाकर पूजन कीजिए, वट के टहनी तोड़कर घर पे पूजन मत कीजिए। तो बुरा उसका सागर संगीत वर्णन भी दिया है महाभारत में कैसे उसका पूजन करना है। ये शुद्ध भक्ति शास्त्र नहीं है, लेकिन इसमें मैसेज क्या है कि पातिव्रत धर्म में कितनी शक्ति है जो आजकल बहुत कम दिखाई पड़ता है। पातिव्रत धर्म से, केवल पातिव्रत धर्म का पालन करने से स्त्री को स्ट्रेट ब्रह्मलोक में जन्म प्राप्त होता है। और वो पतिव्रता नारी अगर कृष्ण की भक्त होगी तो पतिव्रता धर्म और कृष्ण भक्ति स्ट्रेट गोलोक वृंदावन पहुंच जाएगी। जैसे पुरुष के लिए अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, केवल ब्रह्मचर्य पालन करता है, कठोर निष्ठ क्या कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, तो उसके ही कारण वो ब्रह्मलोक में जन्म ले सकता है। लेकिन अगर वो कठोर ब्रह्मचारी कृष्ण भक्त होगा तो सीधे ब्रह्मचर्य और भक्ति के माध्यम से भगवत धाम पहुंच जाएगा। शक्ति है इसके अंदर, इंद्रिय निग्रह और कृष्ण भक्ति। तो ये भी आज के दिन का महात्म्य है। तो सुबह में जाकर वट वृक्ष को स्पर्श करके आया, प्रार्थना करके आया। ये हमारा नाम जैसे ये हमारा वैदिक धर्म है। इस धर्म के अंदर कई संस्कार है, कई उत्सव है, कई पूजाएं हैं, कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमारे पूरे वैदिक संस्कृति को और धर्म को बनाता है, जिसके प्रति हम सबको आदर होना चाहिए। पहले नॉलेज होना चाहिए, फिर आदरपूर्वक उसका पालन करना चाहिए। ये हमारे जीवन को समृद्ध बनाएगा। अगर संस्कृति है हमारे जीवन में, वैदिक संस्कृति है, तो भगवान का भजन और भक्ति करना आसान हो जाता है। और संस्कृति के बिना भगवान का भजन मुश्किल हो जाता है। अगर आपको दो व्यक्ति दिए जाए, हमारे गुरु जी ने ऐसा कहा था एक बार, अगर दो व्यक्ति आपको दिए जाए, एक है क्या कहते हैं असंस्कृत, जिसको कोई कल्चर ही नहीं है, कोई पता ही नहीं कुछ चीज़ का, और वो भक्त है भगवान का, नाम जप करता है लेकिन कोई कल्चर नहीं है। और दूसरा व्यक्ति है पूरा कल्चर्ड है, सुसंस्कृत है, वो तो भगवान का भक्त नहीं बना है, किसको चुनोगे आप? तो उन्होंने कहा कि मैं वो सुसंस्कृत अभक्त को चुनूंगा, क्योंकि वो सुसंस्कृत को भक्त बनाना बहुत आसान है, लेकिन असंस्कृत व्यक्ति को आगे भक्ति का कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। कब छोड़ देगा, कब कुछ गलत काम करेगा, क्योंकि उसको संस्कृति है ही नहीं, बैकग्राउंड फाउंडेशन बुनियाद तो है ही नहीं उसके जीवन में। और हमारा भारतवर्ष जो है वो एक सबसे महान सुसंस्कृत देश है, महान संस्कृति का देश है, और हमने उसमें जन्म लिया है। इसलिए हमारे हर संस्कृत हर उत्सव और विव्रत वैकल्य सबका हमको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारे धरोहर है वो। हम करेंगे तो हमारे बच्चे देखेंगे, वो करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन देखेगा उसको और कौन करेगा। ओके, समय बीतता जा रहा है। तो तीसरा आज का जो हम उत्सव मनाने जा रहे हैं, जो हो चुका है 2 तारीख को, द्वादशी को, ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी के दिन, एम आई राइट प्रभु जी? तो वो चिड़ा दही उत्सव है। देखो श्री कृष्ण भगवान कलयुग में भक्त बनकर आते हैं, अपने सारे जितने भी पार्षद हैं उनको भी भक्त बनाकर लेके आते हैं, जो उनको ये भगवान उनके स्वयं के अवतार हैं, जैसे नरसिंह भगवान जितने भी उनके अवतार अवतारों के भक्त हैं, ये महाविष्णु हैं, वो भी अद्वैत आचार्य के रूप में आते हैं। उनके बड़े भैया बलराम जी महाराज, वो नित्यानंद प्रभु बनकर आते हैं। ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बनकर आते हैं, वृषभानु महाराज राधा रानी के पिताजी पुंडरीक विद्यानिधि बनकर आते हैं, राधा रानी स्वयं गदाधर पंडित बनकर आती है, नारद मुनि स्वयं श्रीवास पंडित बनकर आते हैं। ऐसे हर एक अलग अलग युग के जितने जितने महान महान लोग हैं सब लोग भक्त बनकर आते हैं और स्वयं भगवान भी भक्त बनकर आते हैं। छन्न अवतार, और इस अवतार में वो क्या दिखाते हैं कि कैसे भक्ति की जाती है, उसको सिखाने के लिए अपने स्वयं का उदाहरण बनकर आते हैं, एक भक्त बनकर आते हैं। प्रकट नहीं करते कि मैं भक्त भगवान हूँ, कभी कभी गुप्त रूप में प्रकट किया है, लेकिन आम जनता के रूप में उनको भाई प्रकट नहीं किया है। और आम जनता में कोई भगवान पुकारते तो विष्णु विष्णु कर देते हो, नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, भक्त हूँ भगवान। क्या कहते थे, गोपी भरतुर पदक मलयोर दास दास अनुदास, ए मेरी पहचान क्या है, मैं तो ना ब्राह्मण हूँ ना राजा हूँ ना क्षत्रिय हूँ ना गृहस्थ हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं तो वो गोपियों के जो मालिक है नाथ है उनका मैं दासों का दास हूँ, उनके चरणों का दास हूँ मैं, ये मेरी सच्ची पहचान है, ऐसे भगवान स्वयं बता रहे। तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार, परम दयालु, और एक थे रघुनाथ दास जो उसमें से गोवर्धन मुजुमदार के उनके पुत्र थे शायद, और हिरण्य मुजुमदार के भतीजे थे, दो भाई एक के पुत्र थे वो। और ऐसा कहते हैं कि दिन में उनकी इनकम 450 साल पहले, दिन में नहीं महीने में 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 1200,000 गोल्ड कॉइन्स वॉज मंथली इनकम। आज कितना होगा वो, कितने अब्जो रुपए हो गए। ऐसे राज्य का वो राजपुत्र था, लेकिन भगवान की कृपा से बचपन से ही इतने सारे ऐश्वर्य में रघुनाथ को कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है। देखो, धन दौलत इंद्रिय भोग सौंदर्य अधिकार पद और पावर है ना, कीर्ति, इससे होने से कोई सहजता से छोड़ नहीं सकता है उसे, वही छोड़ सकता है जिस पर भगवान की गुरु की कृपा होती है। इन पर अनन्य कृपा थी, तो मंजरी के अवतार थे, तो घर में बहुत कोशिश किया, ये भागने की कोशिश करते थे हमेशा, कई बार भाग भी गए, तो इनके ऊपर ना ऐसे बॉडीगार्ड लगा दिए, जहाँ जहाँ भागे वहाँ पकड़ के लाते थे उनको। फिर एक सुंदर युवती से विवाह कर दिया उनका, वो कहते हैं उसका वर्णन दिया है चैतन्य चरितामृत में कि देवता देवियाँ भी उनके सामने तुच्छ थी, इतनी सौंदर्य इतनी सुंदर थी, इतनी गुणवती थी, इतनी सुसंस्कृत थी, इतनी सर्वगुण संपन्न थी, अप्सरा और देवलोक की देवकन्याएं भी उनके सामने शर्मिंदा थी, ऐसे उनका सौंदर्य और गुण थे, लेकिन उसमें भी उनको इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी गार्ड लगे हुए थे उनके। और एक बार वो महाप्रभु चैतन्य को मिलने गए, तो महाप्रभु चैतन्य ने उनको बताया, ऐसे तुम बच्चों की तरह ये भागना भागना छोड़ दो, अभी आप थोड़ा मैच्योर हो जाओ, ऐसे रहो कि लोगों को लगे कि अरे तो पूरा दिलो जान से दुनियादारी का काम कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए लोगों को। और भगवान ने उनको ना एक ऐसा अजीब उदाहरण दिया जो सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। भगवान ने कहा, एक साधुशुदा औरत है जिसका घर में पति है, लेकिन वो किसी और से प्यार करती है, तो वो घर के काम इतने अच्छे करती है कि उस पति को, घर वाले पति को कोई जरा सा भी डाउट नहीं आएगा, और पति को संतुष्ट रख के फिर वो चुपचाप उसके मिलने जाती है। वैसे आप रहो, अभी आप देखेंगे अरे ऐसे क्यों उदाहरण दे रहे, इसका अर्थ यह है कि आपका जो प्रेम है भगवान के ऊपर वो आप गुप्त रखो, दिल में उसको पना दो, दिल में उसको परवरिश दो, लेकिन बाह्य रूप से विश्व का ऐसा काम करो, पैसे का, बिजनेस का, धंधे का, राज्य का ऐसा काम करो कि लोगों को लगना चाहिए सुधर गया लड़का अभी ये। तो वो फिर लग गए और इतना अच्छा बिजनेस किया उन्होंने, माता पिता प्रसन्न हो गए उनके, बोले समय आएगा आपका तब आपको जाना है, अभी आप बार बार ऐसे इमैच्योरली भागो मत। फिर उनको ना सत्संग मिलता रहा, हरिदास ठाकुर का वगैरह बहुत संतों का, उसमें पता चला उनको कि जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं हो सकती है। तो उनको पता चला कि पानीहाटी में वो आए हुए हैं नित्यानंद प्रभु, तो ये घर में परमिशन लेके चले गए गार्ड्स थे साथ में, उनको बताया गया ध्यान रखना इसके ऊपर, भाग न जाए, तो भरोसा नहीं है, कई बार भाग चुका है। तो वहाँ गए तो वो ना दूर से उनको प्रणाम कर रहे थे, जिससे जो दूर बैठे हुए ऊंची ऊंची जगह पर, हाँ, नित्यानंद प्रभु अपने निकट के पार्षदों को लेकर गंगा किनारे पानीहाटी में एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, जैसे अनंत चांद खिल रहे हैं चांदनी रात में, वैसे वो नजर आ रहे थे। तो दूर से ही एक नम्रता के आधार पर, या तो जैसे भी अयोग्य भावना से दूर से दंडवत प्रणाम कर, लेकिन जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद के आसपास बैठे हुए, उन्होंने देखा रघुनाथ दूर से ही प्रणाम कर रहा है, और बताया नित्यानंद प्रभु को, देखो रघुनाथ दूर से छुप छुप कर प्रणाम कर रहा है। तो उन्होंने कहा पकड़ के ले गया उसको, तो पकड़ के लाया गया, तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में डाला गया, और नित्यानंद प्रभु ने अपना पैर उठाकर उसके सर पर रखा, बताया चोर हो तुम, चोर जो छुप छुप के काम करता है वो चोर है, और तुम्हारी चोरी के लिए मैं आज आपको दंड दूंगा, कि जितने भी मेरे भक्त आए हुए हैं ये सबको चिड़ा दही का उत्सव होना चाहिए। हमें हमारे गुरु जी बहुत सुंदर बात बताते हैं इसके, वो कहते हैं चिड़ा यानी पोहा, पोहा बताए आपको, वो कहते हैं पोहा इतना सामान्य अन्न है कि उसमें, समझो मैंने आपको पोहा दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स यूजलेस थिंग। सुदामा ने भगवान को पोहा दिया था, एक अभी सबसे कहते हैं कि वो देने के लिए सबसे तुच्छ वस्तु है, किसी को देना है तो वो देने वाले को भी वैल्यू नहीं है, लेने वाले को भी वैल्यू नहीं है उसकी, इतना वो आइटम मूल्यहीन है। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, चिड़ा दही का उत्सव मनाओ, क्योंकि भगवान हमको बताना चाहते हैं कि जब सुदामा जैसा भक्त मुझे चिड़ा देता है यानी पोहा देता है, तो मेरे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है वो, क्योंकि मैं पोहा नहीं खाता, मैं चिड़ा नहीं खाता, मैं उसका प्रेम ग्रहण करता हूँ उसके माध्यम से, मुझे वो प्रेम दिखता है जो पोहे के माध्यम से, चिड़ा के माध्यम से मुझे पास आ रहा है, और मेरे भक्त का हृदय में ग्रहण करता हूँ, मेरे लिए पोहा की कीमत नहीं है। इसलिए जानबूझ के उन्होंने बताया कि चिड़ा दही का उत्सव मनाओ। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि ये बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, तो स्वयं अपने भगवान नित्यानंद प्रभु मुझे आदेश दे रहे हैं, तो वो तो बड़े धनवान थे ना, वो तो राजपुत्र थे, तो उन्होंने ना मार्केट में जितना पोहा था सब खरीद लिया, यहाँ तक कि उस गांव में जितना दुकानें थे सारा पोहा खरीद लिया, और बाजू वाले गांव में भी जाके पोहा खरीदा, और सब जगह से दही खरीद लिया, दूध भी खरीद लिया, एक होता है ना ओटा हुआ दूध जो हम लोग चलाते हैं ना उसको, तो दूध बहुत गाढ़ा हो जाता है, उसको कहते हैं कंडेंस मिल्क, ओटा हुआ दूध, वो खरीदी किया, और दही खरीदी किया, और बहुत सारा दही और पोहा खरीदी किया, उसके साथ खांड खरीदी किया, खांड यानी नेचुरल शुगर, और एक चंपा केला नाम का केला है, जो आपने खाया है कभी चंपा केला, हमारा एक वसई नाम का प्रदेश है वहाँ पर चंपा केला मिलता है, बहुत लंबा होता है पीला रंग का, बहुत अद्भुत मिठास होती है उसके अंदर, आम केले से लंबा भी होता है और अद्भुत होता है, चंपा केला लेके आया, बहुत सारे सुंदर सुंदर व्यंजन दिए हैं उसमें, वो सब लेके आए, उन्होंने क्या किया, दो ना ऐसे प्रभु जी उसको बाद में बांटना, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट लेटर ऑन, डोंट डिस्ट्रीब्यूट नाउ, दो बड़े मटके ले आए, दो बड़े मटके, एक मटके में उस पोहे को कंडेंस मिल्क यानी ओटे हुए दूध में भिगाया, एक बड़े बर्तन में दही में उस पोहे को भिगाया, और एक में वो चंपा केला डाला, और एक में क्या डाला मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बहुत विशिष्ट व्यंजन दोनों में डाले, वो दोनों को सोक किए उन्होंने, और फिर दो दो प्रकार के छोटे छोटे बर्तन है ना वो मट्टी के, वो अनंत मात्रा में खरीदे, और ये चिड़ा दही का उत्सव हो रहा है ये खबर जो है हवा जैसे, हवा की लहरों जैसे पहुंच गई सब गांव में, यहाँ तक कि जिन दुकानदारों ने पोहा दही और दूध उनको बेचा वो भी पूरा चाहिए उत्सव बनाने के लिए वहाँ पर आ गए दुकान बंद करके, क्योंकि तो इतने बड़े पैमाने पर खरीदी की गई, गंगा किनारे पर इतने बड़े पात्र में उसको भिगाया गया, लाखों व्यक्ति खा सकते इतना भिगाया गया उसके अंदर, और वो बनाने के पश्चात उसमें बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन अर्पण करने के, एक दूध वाला एक दही वाला वो करके उन्होंने दो दो पात्र में उसको बांटना शुरू किया, और सबके हाथ में दो दो देने शुरू किए, ऐसा आप है वो आप दो हाथ में दो ले लिए, सबने दो दो लिए, दो दो लिए, इतनी भीड़ जमा हो गई थी, इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि ज़मीन पर जगह नहीं बची, और सब कुछ ये गंगा किनारे हो जाए तो लोग ना पानी में जाने लगे, यहाँ यहाँ तक पानी में भीग कर दो हाथ में मटके लेकर खड़े हैं, और उतने में नित्यानंद प्रभु ने अपने प्रेम के बल से जगन्नाथपुरी में विराजमान चैतन्य महाप्रभु को हृदय से आह्वान किया, आइए आप। मैंने कहा ना पुकारो पुकारो आएंगे। नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही आह्वान किया गुप्त रूप में वो प्रकट हो गए। कहते हैं कुछ ही गिने चुने भक्तों को चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ। और क्या कर रहे थे नित्यानंद प्रभु? नित्यानंद प्रभु सबके दो दो जितने पात्र थे ना उसमें से एक से उठाकर चैतन्य महाप्रभु खिला रहे हैं, दूसरे से उठाकर महाप्रभु खिला रहे हैं, फिर आपके पास आ रहे हैं आपके दो पात्र में निकाल के दोनों मुंह में डाल रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु प्रेरित होकर उसमें से निकाल कर नित्यानंद प्रभु को खिला रहे हैं। बड़े पात्र से भी खिला रहे हैं, छोटे पात्र से भी खिला रहे हैं, और कुछ लोग देख पा रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं हवा में किसको दे रहे हैं। इस तरह से बहुत देर तक लीला हुई और सब लोगों ने बड़े ही आनंद से वो दहीचूड़ा उत्सव मनाया। उतने में राघव पंडित वहां पर आ गए। अरे उन्होंने कहा अरे नित्यानंद प्रभु आपको तो मेरे मेरे घर में भोजन के लिए बुलाया था, आज सारी रसोई तैयार है, उधर इधर क्या कर रहे हैं आप? तो राधे राधे बोलो। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैं संध्या को आपके घर पे आऊंगा, आप रखना उसको, मैं संध्या को प्राप्त करूंगा उसको। और फिर संध्या में जाकर भगवान ने राघव पंडित के यहाँ भोजन किया, सुबह का बनाया हुआ। ऐसे कहते हैं राघव पंडित चंपकलता देवी का अवतार है, और राघव पंडित के घर यानी चंपकलता देवी के अवतार के घर रांधे राधा रानी, स्वयं राधा रानी वहाँ पर भोजन बनाती है। और ये सब होने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग रघुनाथ दास दोबारा नित्यानंद प्रभु को उसी जगह मिलने आते हैं, और फिर दोबारा अपना कदम उनके चरणों पर अपने चरण कमल उनके शीश पर रखते हैं और कहते हैं अब तुमने मुझे बहुत हृदय से आनंद दिया है, भी बहुत ही जल्द आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी और आप जगन्नाथपुरी में भगवान को मिलेंगे और भगवान आपको गले से लगाएंगे, और अपने जो निजी प्राइवेट सेक्रेटरी हैं स्वरूप दामोदर ललिता जी के अवतार हैं उनके पास आपको सुपुर्द करेंगे, आप स्वरूपेर रघु नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे, आपको लोग जानेंगे कि स्वरूप के रघु, इतने आपकी पहचान हो गई, और महाप्रभु आप पर अनन्य कृपा करेंगे। और उसके बाद फिर वो जब निकले अपने घर से तो कोई उनको पकड़ नहीं पाया, हर बार पकड़ के वापस लाते थे, उस बार सब पहरेदार सो गए, जैसे कंस वाले टाइम पे जब भी वसुदेव निकले ना सब पहरेदार सो गए थे ना, माया के प्रभाव से सब सो गए, और रघुनाथ जी फिर भी जंगल के रास्ते से जगन्नाथपुरी पहुंच गए। बहुत लंबी कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है रघुनाथ दास जी का जीवन। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि भगवान के परम प्रिय परम भक्त के कृपा के बिना भगवान को मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि भगवान ने अपने सारे दिव्य साक्षात्कारों की अनुभूतियों की चाबी जो है वो भक्तों को दे के रखी है, जिसको चाहे उसके लिए वो खोल सकते हैं, उनकी मर्जी है। जैसे मेरे घर का ताले की चाबी जो है मैंने आपको दे रखी है, आपको जिसको खुलवा के दिखाना है आप दिखा दो, इतना अथॉरिटी भगवान ने भक्तों को दे के रखा है। इसलिए साक्षात भगवान को प्राप्त करेंगे ये भ्रम है, इसलिए गुरु की होने की जरूरत है, तो गुरु वो परम भक्त है भगवान के, गुरु मुखा पद्म वाक्य यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, उनकी कृपा के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, सभी गुरुओं के वो स्रोत हैं, उगम हैं, सारे गुरुजी हमारे उनके प्रतिनिधि हैं। तो ये लीला के माध्यम से सुंदर लीला चिड़ा दही उत्सव के माध्यम से भगवान ने सत्य को प्रस्थापित किया कि जब तक मेरा भक्त कृपा नहीं करता है तब तक जीवन में कोई दिव्य साक्षात्कार नहीं हो सकता है, और अगर आपके जीवन में कुछ दिव्य साक्षात्कार सूक्ष्म रूप से क्यों ना हो, अगर हो गए होंगे तो ये बात निश्चित समझना कि आपने कहीं ना कहीं भक्तों को और गुरु को प्रसन्न किया है, उसके बिना ये नहीं हो सकता है। आमतौर पर क्या होता है कुछ महान चीज़ हो गई ना तो हम बोलेंगे मैंने किया, तुरंत हम लोग मेरा अहंकार बोलेगा कि मैं करता हूँ, मैंने मेहनत की है, मैंने तपस्या की है, मैंने कष्ट किया है, इसके अनुरूप इसलिए सभी आप देख रहे हो। लेकिन जो मर्म जानता है भक्ति का, उसके जीवन में कुछ महान घटना होती है तो तुरंत समझता है कि इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, ये मेरे गुरु की कृपा है मेरे ऊपर। उसके बिना ये परिवर्तन, ये चमत्कार नहीं हो सकता है। वही एक वस्तु हमें प्रामाणिक रूप से नम्र बना सकती है, और कोई वस्तु हमको नम्र नहीं बना सकती। क्योंकि किसी भी दिव्य घटना का कर्ता समझना बहुत आसान है, लेकिन कर्तापन छोड़ देना बहुत मुश्किल है कि मैं नहीं हूँ, कोई और है इसका। किसी को अपना श्रेय देना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, और वही भक्ति की पहचान है। जब वो श्रेय हम नहीं लेते और किसी को दे देते हैं। श्रेष्ठ लीडर कौन होता है? जब कोई अच्छा काम होता है तो जो नेता होता है, लीडर सच्चा, वो कहता है कि देखो मेरी सहभागी जो है, मेरी टीम है, इनकी मेहनत का ये फल है, उनको तुरंत बांट देगा वो श्रेय। और कोई अपयश आएगा तो वो खुद पर लेगा कि मेरा नेतृत्व ठीक नहीं था, इसलिए मैं दोषी हूँ, इसलिए यश नहीं मिला। वो सच्चा नेता है। और ऐसा ही भाव रखने वाला व्यक्ति भक्त बन सकता है। तो आज का वो सुंदर उत्सव है, हमारे घर पे हम हर साल ये उत्सव मनाते हैं डॉक्टरों के बीच में। पूरा चैतन्य चरितामृत से लेकर पूरा बंगला श्लोक पढ़ के, उसका अनुवाद पढ़ के, वर्णन करते 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 वो बनाते हैं घर में दही चिड़ा दो प्रकार का, उसका आनंद लेते हैं। इस साल क्या हुआ है, मैं यहाँ हूँ, हिमालय में हूँ, तो जैसे पहुँचूँगा तो उत्सव सम्पन्न किया जाएगा। तो ऐसा है, ये भगवान के विषय में, भगवान के भक्तों के साथ में ये दिव्य लीलाओं का अनुभव करना, यानी इस साक्षात लीला में प्रवेश करना है। जब हम लोग इसे बोल रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, तो साक्षात पानीहाटी में गंगा किनारे इस लीला में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि हम है वहाँ पर। हमारे आँखों के सामने महाप्रभु चैतन्य प्रकट हुए हैं, दही चूड़ा खा रहे हैं, उनको खिलाया जा रहा है, वो भी खिला रहे हैं, वो भी खा जा रहे हैं। कुछ लोगों को दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये प्रत्यक्ष लीला में प्रवेश करने का भाग्य प्राप्त होता है जब हम प्रामाणिक हृदय से इस लीला के विषय में चर्चा करते हैं। हरि कथा में वो शक्ति है कि हरि का मिलन करा देती है। हरि कथा श्रणमताम स्वगताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनाम, भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं कथा के माध्यम से। जब कथा होती है तो भगवान अपनी इच्छा से भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। जब हम जप करते हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवान को ले आए, लेकिन जब कथा हो रही है तो भगवान आते हैं। जप में हम करता है, कथा में भगवान करता है। इसलिए वो कहते हैं विदुनोति सुरित सताम, कौन कर रहे हैं? भगवान स्वयं हृदय को स्वच्छ कर रहे हैं जब भगवान की लीला का श्रवण हो रहा है। इसलिए चार चीज करना है ना हमको, यानी भगवान नाम का जप करना है, भगवान की कथा सुनना है, भगवान के विग्रहों का पूजन करना है, और भगवान के धाम में यात्रा करनी है, निवास करना है। इसमें से दो चीज़ें आसान हैं। अभी कोरोना हो गया तो क्या हो गया, धाम बंद हो गए, मंदिर भी बंद हो गए, तो भगवान की अर्च विग्रहों की पूजा बंद, धाम में जाना भी बंद, तो बचा क्या, भगवान नाम और भगवत कथा। तो वो झूम पे भी हो सकती है, तो झूम शुरू हो गया, और एक जगह बैठकर दुनिया भर के लोग एक साथ में आकर कथा कर रहे हैं भगवान की, और झूम पे भी जब भी करते हैं। लेकिन जब करते समय नींद आती है, बहुत सारे कष्ट होते हैं, तो जब से भी आसान भगवान की कथा सुनना है। लेकिन भगवान की कथा सुनना क्यों है, ताकि जब अच्छा हो, भगवान को हृदय में बसा लो, फिर उनको पुकारो। जब छोड़ना नहीं है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, आसान बात है कथा सुनना दिल से, श्रुणमताम स्वकथाम कृष्ण। और वो कथा सुनने पर जब भगवान हृदय में प्रस्थापित हो जाते हैं, तो उनको आपको पुकारना है रोज सुबह उठकर, हृदय से पुकारना है। मैंने कहा ना, हृदय से पुकारने वाले के लिए भगवान दूर नहीं है, सदैव आपके पास है। जेथे जातो तेथे तू माजा सांगाती, साल विषि हाथी धरुनिया। मराठी में अभंग है, तुकाराम महाराज कहते हैं, अरे जहाँ पर भी मैं चलता हूँ भगवान आप मेरे साथ में हो। जेथे जातो तेते, जहाँ भी जा रहा हूँ तू माजा सांगाती, यानी आप मेरे सहचर हो, आप मेरे साथी हो। और कैसे साथी हो, सालविशी हाथी धरुनिया, हाथ पकड़ के चला रहे हो, जैसे माँ अपने बालक को लेके चलती है, पिता अपने बालक को लेके चलता है, वैसे भगवान हम सबके साथ हाथ पकड़ के चलने को तैयार है। आप हाथ उनको दे दो, फिर वो पकड़ के चलेंगे। ले चलेंगे आपको, चाहे दुनिया का कितना भी भूल भुलैया वाला मेला होगा फिर भी आप हटकेंगे नहीं, क्योंकि उनका हाथ आपने पकड़ा है, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है। और मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूँ, ये सब मुमकिन है, ये कोई स्टोरी नहीं है या कविता नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, दिस इज ऑल रियलिटी, ये सब सत्य है, इसका हम सब लोग अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इसी को कृष्ण भावना कहते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं, कृष्ण चेतना कहते हैं, सदैव कृष्ण के बारे में सचेत रहना, इसको कृष्ण चेतना कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, भगवान की कथा करने का अवसर आपने दिया, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। योग्य भी नहीं होंगे फिर भी भगवान की कथा करेंगे तो अनंत पुण्य की प्राप्ति होती, विदुर नोति, हृदय स्वच्छ हो जाता है, भगवान उस हृदय में बस जाते हैं, भगवान के प्रति कथा जो है वो प्रेम निर्माण करती है, और बार बार सुनने पर उस अधिक 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 प्रेम उसके व्यक्ति के प्रति निर्माण होता है। इतनी शक्ति है कथा में, उस कथा का लाभ लेना चाहिए, दिन रात उस कथा में डूबे रहना चाहिए, डूब कर कहना चाहिए, डूब कर सुनना चाहिए, हमारा जीवन धन्य हो जाता है, मनुष्य जीवन भगवान ने दिया वो सार्थक हो जाता है, परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्नोत्तर करने का है क्या, कुछ किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दही चिड़ा बनाया क्या? ये हमारा प्रश्न है। यस, माइक्रोफोन ले लो।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद इतने सुंदर कथा के लिए। आपने अंत में ये कहा कि हमें निरंतर भगवान की कथा में और उनके कीर्तन में डूबे रहना चाहिए। आजकल की व्यवस्था के अनुसार लोग कहते हैं ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, हमारा घर है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, अगर यही सब करते रहेंगे, कमाना है, ये करना है, वो करना है। आप लोग तो बड़े आराम से कह सकते हैं और कर सकते हैं,
क्योंकि आप ब्रह्मचारी हो, घर छोड़ के बैठे हो। देखिए, मेरा भी व्यवसाय है, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी एक बड़े अस्पताल के 12 अस्पतालों का संचालक हूँ, मैं भी स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हूँ, मेरा भी परिवार है, मेरी भी पत्नी है, मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन मैं आपको ना एक नुस्खा बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। इसमें ब्रह्मचारी और गृहस्थ का कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि अंत में हम सब लोग आत्मा हैं, पुरुष स्त्री भी एक बाह्य स्वरूप है आपका, लेकिन हम सब लोग आत्मा हैं और हम सभी आत्माओं का एक ही गोल है, भगवान के पास पहुंचना। हाँ, आपका गोल मेरा गोल अलग नहीं है कि मैं गृहस्थ हूँ, आप ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, आपका गोल डिफरेंट नहीं है, सेम गोल है हमारा, और कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, अरे मैं तो गृहस्थ हूँ, आप तो ब्रह्मचारी हो, कितना बढ़िया हो, सब छोड़ के बैठे हो, कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, सबको अपना प्रपंच होता है, ध्यान रखना इस बात का, हर एक व्यक्ति को अपना अपना प्रपंच होता है, गृहस्थों का अपना प्रपंच है, ब्रह्मचारियों का अपना प्रपंच है, अपनी विवंचनाएँ, अपनी तपस्या है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रैक्टिकल आपके लिए। आप कहते हो ना समय नहीं है, सबसे बड़ा सबका एक ही कंप्लेंट है, टाइम इज़ नॉट देयर, टाइम नहीं मिलता प्रभु जी, 16 माला कैसे करें। मैं सुबह ही जब उठता हूँ तो मेरे बिस्तर पे ही एक प्लेयर होता है, MP3 प्लेयर, तो रात को ही रखता हूँ, उसमें सारे गुरु जी के प्रवचन है एक बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में सारे प्रभुपाद जी के प्रवचन है, पूरा 4,800 प्रवचन प्रभुपाद जी के एक बॉक्स के अंदर है, हाँ, और 2,800 गुरु जी के प्रवचन एक बॉक्स के अंदर है, और वो बॉक्स ऐसा है कि आप उसको ऑन करोगे ना तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से कल बंद किया था वहाँ से ऑन हो जाएगा, और एक ख़त्म हो जाएगा तो उसके आगे का चालू हो जाएगा। आपको खाली टॉपिक चुनना है नंबर डालकर उसके अंदर। गौर लीला सुनना है आपको, पानी हाटी की लीला सुननी है, उसका नंबर देखो उसमें बुक में लिखा हुआ है, नंबर दबाओ उसके अंदर, पानी हाटी का लीला चालू हो जाएगा। और उसमें एक नहीं चार प्रवचन रहेंगे, 1, 2, 3, 4 ये दिन में आओ सुन लो पूरा उसको, लेकिन कभी सुनना है। सबको वॉशरूम में टाइम रहता है, आप ब्रश कर रहे हो, दाढ़ी कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, मेकअप कर रहे हो, बाल बना रहे हो, वो समय कान खाली रहते हैं। उस समय बाथरूम में एक जगह बना दो फर्स्ट क्लास, जहाँ पर आपने अपना शैम्पू रखा है वहाँ पर ये भी रख दो, ऑन करके रख दो, फिर लाइट लगा दो और पूरा जितना समय है सुन लो। मैं रोज़ 1 या 2 प्रवचन मेरे हो जाते हैं सुबह, और जब भी बीच में समय हो, समझो अभी मैं यहाँ पर आया, बैग पैकिंग कर रहा था, तुरंत पहले मैं वो कथा ऑन कर देता हूँ, सारी बैग पैकिंग कर रहा हूँ, कथा सुनते सुनते ही ऑन कर, जरा समय बीच में मिला तो सफ़र कर रहा हूँ, यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ, वो ऑन ही रहता है हमेशा, वो क्या कहते हैं उसको, ब्लूटूथ हेडफोन्स क्या, ईयर प्लग्स, और वो हमारे साथ हमेशा रहता है। जे थे जातो ते थे तू माजा सांगाती, हर जगह हमारा साथ देता है वो। और आप मुझे छाती ठोकर बता दो कि आपके पास कोई समय ही नहीं, आप ना ट्रैवलिंग करते हो, ना बाथरूम जाते हो, ना कुछ नहीं करते, आप बताओ, किसी की हिम्मत है तो बता दो कि हम लोग बाथरूम में जाते ही नहीं, इतना काम है हमारे पास, स्नान भी नहीं करने को टाइम नहीं, ब्रश करने को टाइम नहीं, दाढ़ी करने को टाइम नहीं, कपड़ा पहनने को टाइम नहीं, ऐसे ही आ गया आपके पास, इतना बिजी रहते हैं, ये सब बकवास है। एग्जाम के टाइम पे भी हम लोग बहुत टाइम पास करते हैं, तो कैंटीन में जाते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट फूंकते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, दिमाग में इतना हाइपर सैचुएशन होता है कि उस जाता ही नहीं, तो फिर आके ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक में हम लोग कथा सुनते हैं, टीवी नहीं देखते उस समय जाके, चाय नहीं पीते, सिगरेट फूंकते बैठते नहीं, टाइम पास की बातें नहीं करते पॉलिटिक्स की। हर मूल्यवान फ्री क्षण जो मिलता है उसमें हम कथा सुनते हैं। एक लड़का और एक लड़की जब कॉलेज में प्रेम में गिर जाते हैं एक दूसरे के, उनको बताना पड़ता है क्या? उसके बारे में सोचो, बॉयफ्रेंड के बारे में सोचो, गर्लफ्रेंड के बारे में सोचो, अरे आपको बोलना पड़ता है, उसका सोचना बंद कर, पढ़ाई कर अभी दिन रात सोचते हैं उसके बारे में, तो वो समय कहाँ से आता है? एग्जाम का समय भी है आपका, सब कुछ है वो प्रेमी लोगों का, लेकिन वो विचार जो है ना, चिंतन, वो समाप्त नहीं होता है। उसी तरह से अगर आपकी इच्छा है कि आपको भगवान की कथा सुननी है तो आप सुन सकते हो, उसके 50 मार्ग है, टेक्नोलॉजी है, क्या वो MP3, MP4 जो चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है। इच्छा है क्या आपका? अरे देखो आज मुंबई में आप देखेंगे ना, दिन रात लड़के और लड़की, हर आदमी बुढ़ा जवान, कॉलेज का लड़का लड़की, सब कान में ईयरबड डाल के 1 कोटी गाने, 1 करोड़ गाने हैं मोबाइल के अंदर, वो डाउनलोड करके रखे हैं, दिन रात गाने सुनते रहते हैं। ट्रेन में झगड़े कम हो गए आजकल, पता है आपको? ट्रेन में झगड़े नहीं हो रहे क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं दिन रात। अगर दिन रात ईयर प्लग सुनकर वो फिल्मी गाने सुन सकते हैं, हम भगवान की कथा क्यों नहीं सुन सकते हैं बताओ? और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, भगवान की कथा सुनने में इतना आनंद है ना, इतना आनंद है, आप वर्णन नहीं कर सकते उसका। सारे आपके दुख दर्द मिट जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। दुख दर्द होंगे और जारी रहेंगे, आपको नहीं होंगे वो दुख दर्द, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, अगर आप कथा सुन रहे हो, दुखे दूरे गेलो चिंता ना रोहिलो, चौधरी के आनंद देखी, चारों दिशा में आनंद दिखाई पड़ रहा है, दुख भाग गए हैं, चिंता भी भाग गई है, यह अवस्था का अनुभव आप करेंगे। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर यह है, इच्छा है क्या, पहले वो पूछो, मुमकिन क्या है नहीं है वो बाद की बात है, इच्छा क्या है पहले बताओ। इच्छा नहीं है तो बात करने का मतलब ही नहीं है, आपके पास समय मिलेगा ही नहीं क्योंकि इच्छा ही नहीं है। लेकिन आपके पास वो सारा समय है जिसमें आपको इच्छा है, आप वही करते हुए नजर आएंगे जो आपको इच्छा है। बिजनेसमैन बिजनेस करते हुए दिखाई पड़ेगा, प्रेमी युगल प्रेम करते नजर आएंगे, हाँ सब कुछ अपनी मर्जी से करेंगे वो, उसके पास पूरा समय उसके लिए है, लेकिन भगवान का विषय आएगा तो भाई समय ही नहीं है प्रभु। तो मैं तो एक ही कहूँगा, इच्छा है क्या बताओ, समय की बात मत करो। सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, ब्रह्मचारी को भी 24 दिए, आपको भी 24 दिए, बिजनेसमैन को भी दिए है, और लफंगे को भी 24 घंटा दिए है। कैसे उपयोग करना है वो आपके हाथ में है, और भगवान बता रहे हैं मेरी कथा सुनो और जीवन का उद्धार करो, वो सुनना है कि नहीं वो भी आपकी इच्छा है। ओके, और कोई किसी का प्रश्न है? ब्रह्मचारी प्रभु ने पूछ लिया, अभी गृहस्थों को प्रश्न है तो पूछो। इसलिए आपको विनती करता हूँ, मैं बार बार अनंत बार करोड़ों बार यही लोगों को विनती करता हूँ, अगर आपको बहुत व्यस्तता है उठते ही कथा सुनना आरंभ करो, उठते ही। हाँ यस माता जी,
हमारे गुरु जी जम्मू राठी के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि सिर्फ गुरु की पूजा करो।
क्या करो?
सिर्फ गुरु की पूजा करो।
हाँ
देवता की पूजा मत करो।
हाँ अगर वो गुरु जी के आ गए तो आपको वैसे करना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं, हमने ये बताया, हमारा कहने का सार ये था कि आप देवताओं के अगर पूजन कर रहे हो तो निरपेक्ष होकर करो, ये हमने बताया। और दूसरी बात बताई कि भगवान की पूजा सर्वतोपरि है, लेकिन किसी को अगर देवता पर है अटैचमेंट, आसक्ति है, तो फिर हम कहते हैं कि वो पूजन करो, लेकिन अपेक्षा रख के मत करो कि ये दो वो दो बीवी दो बच्चा दो पैसा दो। तो आपका प्रश्न क्या है बताओ, तो आपका प्रश्न क्या है? हाँ तो गुरु जी जो कह रहे हैं वो गुरु जी जो कह रहे हैं वो सर्वतोपरि है, वो सबसे सर्वोच्च है, हाईएस्ट है वो। अगर वो गुरु जी कह रहे हैं तो आपको तंतो तंत उसको पालन करना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ छोड़ के करना चाहिए। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, यानी गुरु जो है ना वो भगवान से अलग नहीं है, लेकिन वो फिर भी भगवान नहीं है, स्वयं को भगवान नहीं मानते हैं। सदगुरु जो है वो स्वयं को भगवान नहीं मानते हैं, हम उनको भगवान की तरह पूछते हैं, लेकिन वो स्वयं को भगवान नहीं मानते सच्चे गुरु जो है। तो आप उनका भगवान की तरह पूजन करो, लेकिन भगवान अलग है और गुरु जी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, वी विल एंड हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।